नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं रत्ना पांडे। मुख्य समाचार। अमरीका ने होर्मुज जल डमरू मध्य से दो व्यापारिक जहाजों के सुरक्षित गुजरने की पुष्टि की। ईरान के मिसाइल हमले के दावों को खारिज किया। इंडोनेशिया और जापान ने रक्षा उद्योग, मानव विकास और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करने के लिए रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र में रूस के मिसाइल हमले में 5 लोगों की मौत और 18 घायल। एशियाई विकास बैंक ने एशिया प्रशांत देशों में महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को विकसित करने के लिए वित्त पोषण सुविधा शुरू की। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। अमरीकी सेना ने सोमवार को पुष्टि की कि अमरीकी ध्वजवाहक दो व्यापारिक पोत होर्मुज जल डमरू मध्य से सफलतापूर्वक गुजर गए हैं। अमरीका का प्रोजेक्ट फ्रीडम मिशन ईरान की चेतावनियों के बावजूद और संकरे जलमार्ग में हुई घटनाओं से संबंधित बयानों के बावजूद शुरू हो गया है। एक रिपोर्ट।
यह घटनाक्रम ईरान की अर्धसरकारी समाचार एजेंसी फार्स के उस दावे के बाद सामने आया है जिसमें कहा गया था कि ईरानी सेना ने जास्क द्वीप के पास एक अमरीकी नौसेना पोत पर दो मिसाइलें दागी क्योंकि उसने कथित तौर पर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया था। अमरीकी केंद्रीय कमान ने इस दावे का स्पष्ट खंडन करते हुए कहा कि किसी भी अमरीकी नौसेना पोत पर हमला नहीं हुआ है। उधर संयुक्त अरब अमीरात ने एक पोत पर ड्रोन हमले की पुष्टि की। दो ड्रोनों ने ADNOC से संबंधित एक टैंकर पर उस में हमला किया जब वह संकरे जलमार्ग से गुजर रहा था। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने इस घटना को वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बताया और इसे ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा की गई समुद्री डकैती की कार्रवाई बताया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
सरकार ने कहा है कि देशभर में LPG वितरकों के पास LPG की कमी नहीं हुई है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी ब्रीफिंग में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये जानकारी दी।
कमर्शियल LPG में 70% तक की आपूर्ति की जा रही है। अभी तक लगभग 2,15,000 टन कमर्शियल LPG की सेल हुई है और ऑटो LPG की सेल अप्रैल से लेकर अब तक लगभग 11,100 टन की गई है। 5 किलो के सिलेंडर की आपूर्ति भी 100% इंक्रीज की जा चुकी है और इसके चलते अब तक लगभग 23,05,000 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है।
पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक ओपेश कुमार शर्मा ने कहा कि सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और कोई घटना दर्ज नहीं की गई है। श्री शर्मा ने बताया कि DG शिपिंग ने 2,976 से अधिक भारतीय नाविकों की स्वदेश वापसी में सहायता की है। इंडोनेशिया और जापान ने रक्षा उद्योग, मानव विकास और आपदा निवारण उपायों के क्षेत्र में संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक नए रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री जाफरी जमशोद्दीन ने आज जकार्ता में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमू के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर से पहले इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने एक दूसरे के राष्ट्रीय हितों का सम्मान करते हुए रक्षा क्षेत्र में ठोस सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। श्री कोइजुमू ने इसे एक महत्वपूर्ण समझौता और दोनों देशों के बीच भविष्य के सहयोग के लिए एक दिशा निर्देशक बताया। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने, संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करने और रक्षा प्रौद्योगिकी और हार्डवेयर पर सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि वो अटलांटिक महासागर में एक क्रूज पोत पर हुई सार्वजनिक स्वास्थ्य घटना पर कड़ी निगरानी रख रहा है। इस पोत पर हंता वायरस प्रकोप से 3 लोगों की मौत हो गई है और अनेक संक्रमित बताए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि वो स्थिति से अवगत है और राहत कार्यों में सहायता कर रहा है। हंता वायरस मुख्य रूप से संक्रमित चूहों और गिलहरियों इत्यादि के मलमूत्र या लार के संपर्क से मनुष्यों में फैलता है। यूक्रेन के पूर्वोत्तर क्षेत्र स्थित खार्कीव के नगर मरेफा पर रूसी मिसाइल हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और 18 घायल हुए। क्षेत्रीय गवर्नर के अनुसार मृतकों में 2 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। घायलों में 4 की हालत गंभीर है। इस घटना के बारे में रूस की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। एशियाई विकास बैंक ADB ने आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में सहायता के उद्देश्य से एक नई वित्त पोषण सुविधा शुरू की है। ये पहल एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों को स्वच्छ ऊर्जा, बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन तथा डिजिटल प्रौद्योगिकी में लाभ पहुंचाएगी। महत्वपूर्ण खनिज से विनिर्माण वित्त पोषण साझेदारी सुविधा नामक इस सुविधा का उद्देश्य क्षेत्र को कच्चे माल के आपूर्ति से प्रसंस्करण, विनिर्माण और पुनर्चक्रण जैसे उच्च मूल्य वाले उद्योगों के केंद्र में बदलना है। बैंक के अनुसार ये पहल महत्वपूर्ण खनिजों की मूल्य श्रृंखलाओं में परियोजना तैयारी, नीतिगत सुधार और सार्वजनिक निवेश तथा निजी वित्त पोषण को बढ़ावा देगी। ये कार्यक्रम विकासशील सदस्य देशों को उन्नत विनिर्माण क्षेत्रों में आगे बढ़ने में सहायता के लिए शुरू किया गया है। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मासातो कांडा ने एक बयान में कहा है कि महत्वपूर्ण खनिज अगले औद्योगिक युग को आकार देंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के एक प्रतिनिधिमंडल से भेंट की। इसका नेतृत्व जापानी प्रतिनिधि सभा के सांसद और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नीति अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष ताकायुकी कोबायाशी कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि इस दौरान ऑटोमोबाइल, अवसंरचना, फार्मास्यूटिकल्स और उन्नत विनिर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी विचार विमर्श हुआ। श्री गोयल ने भारत से निर्यात बढ़ाने और बाजार पहुंच में सुधार करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता तथा व्यापक हिंद प्रशांत आर्थिक सहयोग ढांचे के अंतर्गत भविष्य की संभावनाएं तलाशने हेतु कारोबारी पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद भारत और जमैका के घनिष्ठ संबंध हैं और दोनों ही ग्लोबल साउथ के विकासशील राष्ट्र होने पर गर्व करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ही देशों ने वैश्विक समुदाय में अपनी अलग पहचान बनाई है। डॉक्टर जयशंकर ने जमैका के सबीना पार्क क्रिकेट स्टेडियम में नए डिजिटल स्कोर बोर्ड के अनावरण के अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि भारत उत्सवों, खेलों और मुश्किलों के हर पल में जमैका के साथ खड़ा रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज दिल्ली में जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नीति अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष ताकायुकी कोबायाशी से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने भारत जापान संबंधों के रणनीतिक महत्व की पुष्टि की और साझा हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। IPL क्रिकेट में मुंबई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 229 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 8वें ओवर में बिना किसी विकेट के 97 रन बना लिए हैं। लखनऊ ने निर्धारित ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 228 रन बनाए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमरीका ने होर्मुज जल डमरू मध्य से 2 व्यापारिक जहाजों के सुरक्षित गुजरने की पुष्टि की। ईरान के मिसाइल हमले के दावों को खारिज किया। इंडोनेशिया और जापान ने रक्षा उद्योग, मानव विकास और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करने के लिए रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। यूक्रेन के खार्कीव क्षेत्र में रूस के मिसाइल हमले में 5 लोगों की मौत और 18 घायल। एशियाई विकास बैंक ने एशिया प्रशांत क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को विकसित करने के लिए वित्त पोषण सुविधा शुरू की। और IPL क्रिकेट में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।